भगवान कहते हैं कि इस जगत के अंदर एक सृष्टि चक्र चल रहा है। क्या है वो सृष्टि चक्र, हमने बहुत बार रिपीट किया है, अब आप लोग बताएंगे क्या है वो सृष्टि चक्र। ब्रह्मन है, ब्रह्मन से वेद आया, वेद के बाद कर्म, उसमें है वेद में कर्म लिखा हुआ है, कर्म को कैसे करना है, यज्ञ रूप से कर्म करना है। यज्ञ रूप से कर्म करने से क्या होगा, बारिश होगी, बारिश होगी तो क्या होगा, अन्न होगा, अन्न होगा तो क्या होगे, जीव होगे। तो ये एक चक्र चलता जा रहा है कंटिन्यूअसली, और सब कोई उसका पालन करते हैं। सृष्टि में आप देखो सब कोई पालन करते हैं। यज्ञ रूपी कर्म मतलब क्या, हाँ यज्ञ, विष्णु का एक नाम है यज्ञ, तो विष्णु के लिए, विष्णु के लिए मतलब ईश्वर के लिए, ईश्वर के लिए माने ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करना जो है वो यज्ञ कर्म है। अगर आप नहीं करते हो तो क्या होगा, बंधन होगा। बंधन का मतलब जन्म मरण चक्र में घूमते रहेंगे। तो हमको यज्ञ रूपी कर्म करने हैं। अगर सारी सृष्टि करती है, अगर हम ना करें तो चक्र में प्रॉब्लम आएगा ना। अब ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, एक आदमी उसके अंदर आउट ऑफ ट्यून बजा रहा है, सारा ही ऑर्केस्ट्रा गड़बड़ हो जाएगा। उसी तरह से सृष्टि के सब जगह सारी प्रकृति कर रही है, अगर हम ना करें तो जो है प्रकृति गड़बड़ करेगी। अब देखो फैमिली, जब हम पैदा हुए तो फैमिली भी हमें देखती है, समाज भी देखता है, देश भी देखता है। जब आए तो सब व्यवस्था थी ना, हमने आके तो हॉस्पिटल थोड़ी ना बनाया, हॉस्पिटल बना हुआ था जहां पैदा हुए। तो अगर देश समाज सब हमको दे रहा है तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि हम भी दें। अगर आप नहीं देते हैं तो भगवान ऐसे लोग को चोर कहते हैं, और एक जगह जाके लिख दिया कि आपका जीवन व्यर्थ हो गया। क्यों व्यर्थ हो गया, क्योंकि आप जीवन मरण के चक्र में घुस गए। इसी जीवन के अंदर आप ब्रह्म को प्राप्त कर सकते थे, अगर ब्रह्मन को नहीं प्राप्त किया तो इसका मतलब क्या हुआ, जीवन बेकार चला गया ना। अब कहते हैं कि एक आदमी जो है इसमें एक्सेप्शन है, एक आदमी को कर्तव्य कर्म नहीं करने हैं, बाकी सबको करना है, बाकी सबको अपने नियत कर्म करने हैं। नियत कर्म क्या है, आपके अपने प्रति कर्तव्य है, आपके परिवार के प्रति कर्तव्य है, समाज के प्रति कर्तव्य है, देश के प्रति है, विश्व के प्रति है, सबके प्रति आपके कर्तव्य हैं। आप इन सबके ऋणी हो, इन सबके आप ऋणी हो। तो कर्तव्य कर्म करने हैं, मगर एक ऐसा व्यक्ति है जिसको नहीं करना है, और अर्जुन सोच रहा था वो व्यक्ति मैं हूं, मेरे को युद्ध नहीं करना है। तो ये कौन व्यक्ति है? तो ये व्यक्ति वो है जिसको हम मुक्त कहते हैं, जो आत्मरति है, आत्मतुष्ट है, आत्मसंतुष्ट है। वो व्यक्ति को कोई कर्तव्य कर्म नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसको इस दुनिया से कुछ पाना नहीं है, कुछ लेना नहीं है इस दुनिया से। क्यों नहीं पाना है? क्योंकि उसको मालूम है कि दुनिया की वस्तुओं के पाने से हमें सुख नहीं मिलता है, और वो सुख के सागर के अंदर गोता लगा रहा है, क्योंकि वो ज्ञानी है। इसलिए उसका कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। कुछ अगर नहीं है तो फिर उसकी ड्यूटी भी नहीं है। दो किस्म के व्यक्तियों की ड्यूटी नहीं है, एक तो अज्ञानी है, वो अपना कर्तव्य कर्म नहीं करना चाहता, और एक ज्ञानी है जो सब कुछ जान के भी उसकी कोई ड्यूटी नहीं है। तो अज्ञानी भी कोई ड्यूटी नहीं करना चाहता, और ज्ञानी जानता है कि हमारी कोई ड्यूटी नहीं है। इस वास्ते दो व्यक्तियों की कोई ड्यूटी नहीं है। अच्छा, ज्ञानी को फल में कोई रुचि नहीं है, न कश्चित अर्थ व्यपाश्रय। कोई फल भी जो क्रिया से मिलता है उसको वो फल नहीं चाहिए, उसको ये फल नहीं चाहिए। एक संत हुए हमारे यहां अखंडानंद महाराज, आपने नाम सुना है अखंडानंद महाराज का? उनका जन्म हुआ था 1911 के अंदर, और 1987 के अंदर 76 साल की आयु में उन्होंने देह को रख दिया। जब वो पैदा हुए थे तो सब जितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने जो है जन्मपत्री देख के बताया कि इनकी उम्र 19 साल की है, बस ये 19 साल तक जिएंगे। तो घर वाले सोचे अगर 19 साल तक जिएंगे तो 10 साल की उम्र में उनको भागवत पढ़ाना शुरू कर दिया। भागवत पढ़ो। अब फिर ये सोचे कि अब हमको अब 19 साल के अंदर चला ही जाना है, तो अब हम गृहस्थी वगैरह क्यों बने? तो चले गए संन्यास की तरफ, आश्रम आश्रम में घूमने लगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम आपको ऐसा ज्ञान दे देंगे जिससे आपको जो है मृत्यु का भय नहीं रहेगा। मृत्यु तो होगी मगर मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तो वेदांत के ज्ञान से जो है मृत्यु रहेगी मगर मृत्यु का भय नहीं रहेगा। वेदांत के ज्ञान से ये हो जाता है। तो ये महाराज कहते हैं कि एक बार मैं गया कहीं पर प्रवचन देने के लिए, 4-5 दिन रहना था, तो एक सेठ के घर में रुके। तो सेठ ने अपने नौकर को कह दिया था कि महाराज को जो चाहिए होगा दे देना। अब महाराज वृंदावन के रहने वाले, गोरस पीने वाले। गोरस किसको कहते हैं? दूध। तो दूध पीने वाले महाराज। तो उसने जो है नौकर को कह दिया महाराज को जब दूध चाहिए होगा जैसे चाहे वैसा उनको दे देना। अब महाराज को दूध चाहिए, उसने नौकर को बोला भाई दूध ले आओ चीनी डाल के। अब ये सोचने लगा कि महाराज को जरा टेस्ट किया जाए। नौकर सोचता है देखें इनको गुस्सा आता है कि नहीं। अब वो ले आया लस्सी नमक डाल के। महाराज को चाहिए दूध चीनी देके, और नौकर लाता है लस्सी नमक डाल के। रोज महाराज कहें कि तुम दूध लाओ, और रोज लस्सी ले आओ, और रोज पी ले। पांच जिनके बाद में वो नौकर कहता है, महाराज दूध कैसा है? तो बोले, तुमने जैसा दिया वैसा है। तुमने जैसा दिया वैसा है। अब वो समझ गया कि वो मेरे को परखना चाहता है, तो परख लो। तो समाज के अंदर ऐसे भी बहुत लोग होते हैं, वो टेस्ट करना चाहते हैं, जरा इनका परीक्षा ली जाए, संत पहुंचे हुए हैं कि नहीं पहुंचे हुए हैं। एक जगह अखंडानंद महाराज और एक जगह गए, तो वहां पर उनको भोजन के लिए 4-5 दिन रुकना था। रोज भोजन बिना नमक के दे। अब लोगों की अपनी अपनी समझ है, देखो सब जो है अज्ञानी जो है ज्ञानी को अपनी दृष्टि से देखते हैं। क्या देखते हैं? ये तो ज्ञानी है, ये तो संत हैं, इनको तो जमीन पर सोना है, इनको उबला खाना देना चाहिए, इनको नमक नहीं दो, इनको मिर्चा मत दो। देखो मसाले किस चीज के लिए चाहिए? जीभ के लिए चाहिए, और किसी चीज के नहीं चाहिए। ज्यादा मसाले आपका पेट भी जो है नहीं सहन करना चाहता है। तो रोज महाराज खा ले, उनको क्या फर्क पड़ता है? जो आया भिक्षा में खा लो, पेट ही तो भरना है। देखो महाराज लोग को, स्वामी जी लोग को ये पता है कि ये जो भूख है ना, वो एक बीमारी है। ऐसी बीमारी है कि आपको 3 बेला रोज खाना है, जन्म से लेकर मृत्यु तक खाना है। ये बीमारी है, जाती नहीं है। तो क्या करना है? तो खा लो भाई, पेट ही भरना है ना, खा लेते हैं, जो मिला खा लो। आप महात्मा आए, स्वामी आए, आप सर्व करो या ना करो, मैं सच बताता हूं, हमारे यहां पर महात्मा आने से भिक्षा देने वाले लोग नहीं मिलते हैं। अब क्या दोष होता है मैं आज आपको बताता हूं। हमारे 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, गृहस्थ आश्रम को 3 आश्रमों का भार लेना पड़ता है। देखो मालूम है आपको, गृहस्थ को जो है ब्रह्मचारी को भी देखना है, गृहस्थ को वानप्रस्थी को भी देखना है। आप अपने फैमिली में देखो, परिवार में देखो, आप बच्चों को देखते हो कि नहीं देखते हो? आप अपने बुजुर्गों को देखते हो कि नहीं देखते हो? जो सन्यासी हैं उनको भी देखते हो? तो ये 3 को देखना का ड्यूटी किसकी है? किसका कर्तव्य है? अगर वो ना करे बताओ क्या होगा?
भूखे रह जाएंगे।
पाप होगा कि नहीं मेरे, ये बताओ। अगर आप अपना कर्तव्य कर्म नहीं करते हो, गृहस्थी अपना कर्तव्य नहीं करता है, तो क्या होगा? कौन दोषी है? समझ में आया? हमारे जो है भिक्षा के लिए जो बेचारी सूबी जी जो परेशान हो जाती हैं, भिक्षा दो भिक्षा दो भिक्षा दो, ये स्वामी जी आ रहे हैं, 3 दिन रहेंगे, 6 बेला आदमी नहीं मिलते हैं, बहुत दुख होता है। मगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, महात्मा उससे प्रभावित नहीं है, जो मिल जाए खा लो, अपना पेट भरना है और क्या, चलो फिर आगे थोड़ी ना, यहां 3 दिन के बाद फिर यहां रहना है, फिर हम आगे चल पड़े अपना आगे। देखो उनके लिए, या निशा सर्व भूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। जो मुनि है, जो ज्ञानी है, जिसके प्रति सारी दुनिया जाग रही है, उसके प्रति वो सोया है, और जिसके प्रति सब सोए हैं उसके प्रति वो। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब लोग जागते हैं तो सोता है, और जब सोते हैं तो जागता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के लोग जो है जगत के प्रति जागे हुए हैं, और आत्मा या ब्रह्मन के प्रति सोए हुए हैं। अब मुनि उसकी क्या अवस्था है? वो जगत के प्रति सोया हुआ है और आत्मा के प्रति जागा हुआ है। तो जगत में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे उसे कोई फर्क नहीं है। अब प्रश्न होता है कि अगर हमको इस कैटेगरी में आना है, कर्तव्य कर्म अपने छोड़ने हैं, कर्तव्य कर्म हमको कुछ नहीं रहना चाहिए, क्या करना होगा? आपको अगर ज्ञानी बनना है, ऐसा ज्ञानी जिसका कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, अब बनना चाहते हो? कोई हाँ नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा कि बनना चाहते हैं क्या?
हाँ,
बनना चाहते हैं। चलो एक तो हमें मिला। तो क्या करना होगा? तो बोले आपको दो काम करने हैं, एक तो आपको कर्मयोग करना है, कर्मयोग करते करते नैष्कर्म हो जाएगा। नैष्कर्म वर्ड सुना आपने? कई बार हमने बताया नैष्कर्म मतलब क्या होता है, एक्शनलेसनेस। एक्शनलेसनेस का मतलब क्या हुआ?
फल की इच्छा के
बगैर कर, ये सब आपका कॉमन सेंस है। एक्शनलेसनेस कब होगा? जब आप डिजायरलेसनेस होंगे। डिजायरलेसनेस कब होंगे? जब आप वासना लेसनेस होंगे। वासना लेसनेस क्या है? अज्ञान है। ये वासना लेसनेस कब होगा? जब आपको
ज्ञान हो
जाएगा। जब ज्ञान हो जाएगा आप वासना लेस हो गए, डिजायर लेस हो गए, एक्शन लेस हो गए। समझ में आया विज्ञान? कर्म योग करते 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 आप निष्कर्म को पहुंच जाओगे। तो लक्ष्य को पहुंचने के लिए आपको कर्तव्य कर्म करना है। कैसे करें? अब देखो यहां पर 19वें श्लोक में हमने पिछले दिन देखा था कि तस्मात असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर है, तस्मात देयरफोर। देयरफोर जब भी भगवान तस्मात कहे ना, तो आप समझ लेना कि भगवान एक कंक्लूजन देने जा रहे हैं कि हमने इतना डिस्कस कर लिया, नाउ दिस इज समरी। क्या है समरी? कि असक्त सततम, सततम बराबर काम करो, कार्यम अपने कर्तव्य कर्म करो। कैसे करो? असक्त, सक्त मीन्स असक्त मीन्स नॉट अटैच्ड। कर्तव्य कर्म करने को कह रहे हैं, अपना कर्तव्य कर्म करो। कैसे करो? अनअटैच्ड। फिर कैसे करो? समाचर ठीक से करो। देखो हमारे यहां हम लोग, हमारे पास तो और एग्जाम्पल नहीं है, यमुनोत्री छोड़ के एग्जाम्पल नहीं है। आप लोग बोलते हैं भाई सेवा के लिए आइए, लोग आते हैं अपना क्लास के ठीक दो मिनट एक मिनट पहले आएंगे, और क्लास जहां खत्म हुई जूते पहने कोट पहना भाग जाएंगे सब, कोई रुकता नहीं है। तो उनको कहो भाई भाई थोड़ा सफाई कर दो, थोड़ा ये देख दो या वो देख दो, चीजें सही जगह पर रख दो, कोई नहीं है। समाचार बोला, अगर आप सेवा करते हो समाचार ठीक से करो। उसके बाद में कहते हैं असक्त ही आचरण कर्म परमात्मा पुरुष है। कर्तव्य कर्म करना, समाचार करना, असक्त होकर करना है। ऐसे कर्म करने से परम मिल जाएगा, परम, परम में ब्रह्मन आपको मिल जाएगा। तो एक व्यक्ति बोलता है कि अच्छा आप तो एक गीता में कहते हैं परम मिल जाएगा कर्म करने से, हमने तो ऐसा सुना है ब्रह्मविद आपनोति परम, ऐसा तैतरीय उपनिषद में सुना है। परम कैसे मिलता है? ब्रह्म को जानने से मिल जाता है, और आप तो कर्म करने को बोल रहे हो, ये क्या बात है? आपको समझ में आया? गीता में भगवान कह रहे हैं कि आप अपना कर्तव्य कर्म करो। कैसे करो? अनासक्त होकर करो, समाचर करो, तब आपको परम मिलेगा। परम मतलब भगवान मिल जाएंगे। तैतरीय उपनिषद कहता है ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद जो ब्रह्म को जानता है आपनोति, उसको क्या मिल जाता है परम, परम मतलब उसको ब्रह्मन मिल जाता है। तो आप इसको कैसे रिकंसाइल करोगे, दोनों एक है, किसकी बात माने, उपनिषद की बात माने कि गीता की बात माने, दोनों ही ठीक हैं, तो रिकंसाइल करके बताओ कैसे दोनों ठीक हैं। तो ऐसा है कि परम का माने क्या होता है, परम का माने होते हैं ब्रह्मन, ब्रह्मन कैसा है, इनफाइनाइट है, देश काल वस्तु परिचिन्न रहित है, नॉट लिमिटेड बाय एनी स्पेस, नॉट लिमिटेड बाय टाइम, नॉट लिमिटेड बाय एनी ऑब्जेक्ट, इसलिए वो ब्रह्मन है। कर्म क्या है, कर्म इनफाइनाइट है कि फाइनाइट है, फाइनाइट है, बहुत अच्छा है, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, कर्म फाइनाइट है। अच्छा, क्या फाइनाइट कर्म से आपको इनफाइनाइट मिल सकता है, कॉमन सेंस है आपका, क्या फाइनाइट कर्म से आपको इनफाइनाइट मिल सकता है। $1 एक फाइनाइट है, क्या ये $1 आपको इनफाइनाइट सुख दे सकता है, क्या इसकी कैपेसिटी $1 से ज्यादा बढ़ सकती है,
नहीं,
नहीं बढ़ सकती। तो कर्म से आपको कभी भी इनफाइनाइट नहीं मिलेगा, एक तो ये सिद्ध हो गया। सिद्धांत क्लियर है ना, कर्म से क्या क्या मिलता है, तो शंकराचार्य जी ने चार चीजें बताई हैं, किसी को याद है, ने कर्म से क्या क्या मिल सकता है, बना सकते हो, एक तो है उत्पाद्य, किसी चीज को आप प्रोड्यूस कर सकते हो, उसके बाद विकार्य मॉडिफाई कर सकते हो, तीसरा संस्कार कर सकते हो, प्योरीफाई कर सकते हो, चौथा आप्य, आप्य मतलब आपको यहां से डाउनटाउन जाना है, तो कर्म आप चलते हुए या गाड़ी से वहां गए, आप्य आप पहुंच गए गंतव्य स्थल पर, आप्य हो गया। तो कर्म से ये चार चीजें हो सकती है। तो परम को जो है पाया जा सकता है मगर बनाया नहीं जा सकता, परम ब्रह्मन को इनफाइनाइट को हम पा सकते हैं, उसको हम बना नहीं सकते, कर्म से वो बनेगा नहीं कभी। तो परम को कैसे हम जान सकते हैं, तो यहां पर हमारे उपनिषद कहते हैं कि परम को आप जान सकते हो कैसे, विद्या, ज्ञान से जान सकते हो, और कुछ नहीं करना है। तो जो चीज जानने मात्र से मिलती है वह वस्तु आपके पास वर्तमान है, जो वस्तु आपको केवल जानने मात्र से मिल जाती है वह वस्तु आपके पास में है, समझ में आया ये, जो भी वस्तु आपको जानने मात्र से मिल जाती है वो वस्तु आपके पास में ऑलरेडी है। तो आपको करना क्या है, केवल जानना है, कोई कर्म नहीं करना है, कोई कर्म नहीं करना है, केवल जानना है। हम लोगों ने आत्मबोध में देखा, आत्मा तो सततम प्राप्तम अपि अप्राप्तवद अविद्या तन्नाशे प्राप्तवद भाति स्वकंठावरणम यथा। आत्मा सततम प्राप्तम आपके पास में है, मगर हमको लगता कैसा है, नहीं है मेरे पास, नहीं है, लग रहा है नहीं है मेरे पास में, तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपके पास नहीं है, अज्ञान के कारण में। आपको ज्ञान नहीं है कि आपके पास में आत्मा है, तो जिस दिन ये आपका ज्ञान नष्ट हो जाएगा उस दिन क्या होगा, तन्ना से प्राप्तवत भाति, तब लगेगा अरे मुझको मिल गया, आत्मा मिल गया। शंकराचार्य जी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, स्व कंठावरण यथा, स्व अपना कंठ, नेक आवरण, नेकलेस। यथा क्या मतलब, हमारे गुरुदेव तो बहुत इसके ऊपर लंबी कहानी बनाते थे, शादी हुई, शादी के बाद में फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी ने हस्बैंड ने आपको एक सोने का हार दिया, उसके बाद फिर कभी नहीं दिया, वो हार आप गले में पहने हुए हो और आप किसी कारण से भूल गए कि हार कहाँ गया। अब सारे घर में खोजते हो, सारी अलमारियां खोजते हो, सारे ड्रॉअर खोज दिए, अब आपको हार मिल नहीं रहा है, सारा दिन जो आप परेशान हो, खाना पीना बंद। और शाम को पतिदेव आते हैं तो पूछते हैं क्या हुआ, प्रिय बताओ क्या हुआ, तेरा मुंह बहुत मुलायम क्यों है, तो बोला आपने जो हार दिया तो पता नहीं कहां चला गया, मिल नहीं रहा है। रोते रोते कहती है अरे आपके गले में है, देखो उस हार पाने के लिए कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, क्या चाहिए था, केवल ज्ञान, किसी ने बता दिया अरे तो आपके पास है। वैसे ही आत्मा भी उसी तरह से है, हम सबके पास है मगर हमको मालूम नहीं है। मगर जानने के लिए मन शुद्ध चाहिए और सूक्ष्म चाहिए, दो चीजें चाहिए। उस आत्मा को जानने के लिए मन शुद्ध चाहिए एवं सूक्ष्म चाहिए, कंड्यूसिव सर्कमस्टांसेस चाहिए। जब शुद्ध मन होगा तब जो है आपको आत्मा दिखाई पड़ेगा। तो इस कंड्यूसिव सर्कमस्टांसेस को बनाने के लिए कर्मयोग करना है। मैंने आपको बताया क्यों कब पता लगेगा, जब आपका मन शुद्ध होगा और सूक्ष्म होगा, तो कर्म योग से मन शुद्ध होता है। जब मन शुद्ध होगा तो कंड्यूसिव सर्कमस्टांसेस बन जाएंगी, और कंड्यूसिव सर्कमस्टांस होने से ही असक्त तो ही आचरण करना परम आपनोति पुरुषा, तब आपको मिल जाएगा। असक्त हिसाब से आप करते जाओ, आपको मिल जाएगा। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये आपनोति का मतलब क्या हुआ, तो बोलते हैं सत्य शुद्धि द्वारे न इत्यर्थ, कि इस तरह से कर्म योग करते करते आपका मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होने के बाद में आपको कोई आचार्य कोई स्वामी ज्ञान देगा। केवल मन शुद्ध होने से ही आपको नहीं पता लग जाएगा, किसी को आपको ज्ञान कोई देगा कि हाँ ये देखो यहां पर है ये, तब जो है आप रियलाइज कर लोगे, तब आपको मिल गया। देखो आप जो है ना केला अमरूद या एप्पल बना नहीं सकते, आपकी हिम्मत के बाहर है। क्या आप बना सकते हो केला अमरूद एप्पल, तो दूर की बात रही, आप एक जो है चावल का दाना बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। देखो केला एप्पल अमरूद सब जो बीज के अंदर है, सीड में है, मगर वो व्यक्त कैसे होगा, आपको कंड्यूसिव सर्कमस्टांसेस बनानी है। व्हाट इज कंड्यूसिव सर्कमस्टांसेस, आपको सीजन देखना है, उसको सीड को प्लांट करना है, उसके अंदर खाद देना है, उसके अंदर पानी देना है, तब तो फिर उसका फल आएगा। तो आपने क्या किया, आपने क्या केला और एप्पल बनाया, आपने केवल कंड्यूसिव सर्कमस्टांसेस बना दिए। उसी तरीके से हमको भी आत्म तत्व को जानने के लिए पहले कंड्यूसिव सर्कमस्टांसेस बनाने होंगे। व्हाट इज दिस कंड्यूसिव सर्कमस्टांसेस, मन जो है तैयार होना चाहिए उसके जानने के लिए, मन ट्यून्ड होना चाहिए, मन सूक्ष्म होना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि जैसे हमारा रेडियो को ट्यून करना होता है ना, आपको बीबीसी पकड़ना है तो उसको ट्यून करना होता है, या सिलोन के गाने सुनने हैं। एक टाइम था सिलोन के गाने आते अमीन साइनी है, तो उसको ट्यून करते हैं, या ये गाना शुरू हो गया, तो वैसे इस माइंड को भी जो है ट्यून करना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा। देखो परम मेरे पास है मगर मेरे को अज्ञान है, मेरे को मालूम नहीं है, परम मेरे पास ही है मेरे को अज्ञान है, ये कैसे मिलेगा, बाय राइट थिंकिंग। केवल राइट थिंकिंग से मिलेगा। राइट थिंकिंग कब होगी? जब माइंड प्योर होगा। एकदम साइंस है ये। जब माइंड प्योर होगा तब राइट थिंकिंग होगी, जब माइंड अनप्योर होगा राइट थिंकिंग नहीं होगी। और राइट थिंकिंग कैसे होगी, मन प्योरीफाई कैसे होगा? कर्म से होगा। कर्म योग आपको करना है। तो अर्जुन जानना चाहता है किसी को कर्म करके जिस तरह से आप बताते हो अपना कर्तव्य कर्म ईश्वर की प्रीत्यर्थ के लिए करते हुए, किसी को ऐसा आत्म तत्व मिला? मेरे को एग्जाम्पल बताओ। भगवान कहते बताते हैं, एग्जाम्पल सुनो।
वर्स नंबर 20। कर्मन्नैव हि संसिद्धिम्।
कर्मन्नैव हि संसिद्धिम्।
आस्तिता जनकादयः।
आस्तिता जनकादयः।
लोकसंग्रहमेवापि।
लोकसंग्रहमेवापि।
संपश्यन् कर्तुमर्हसि।
संपश्यन् कर्तुमर्हसि।
कर्मन्नैव हि संसिद्धिम्। आस्तिता जनकादयः। लोकसंग्रहमेवापि। संपश्यन् कर्तुमर्हसि।
भगवान कहते हैं आपने जनक का नाम सुना है, सीता के पिता सबको जानते हैं। देखो जब एग्जाम्पल देना होता है ना, तो आपको एग्जाम्पल ऐसा देना चाहिए कि जो लोग जाने। एग्जाम्पल के अंदर जो है विश्वास होना चाहिए। जनक को जानते हैं? बोले हाँ जानते हैं। तो जनक को जो है मिला, देखो जनक सन्यासी नहीं थे, राजा जनक थे, मगर वो ज्ञानी थे। ज्ञान के बाद भी वो कर्म कर रहे थे। ऐसा नहीं कि ज्ञान के बाद में अपना सब छोड़ छाड़ के राजपाट छोड़ के बैठ गए, ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो ऐसा होता भी नहीं है, ज्ञान के बाद भी लोग काम करते रहते हैं। हमारे गुरुदेव भी करते रहे, ज्ञान के बाद में काम करते रहे, बहुत काम किया उन्होंने। जब भी कोई पॉइंट समझाना होता है ना, तो फिर हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं। तो कौन सा एग्जाम्पल देंगे? रोजमर्रा का। अभी का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अभी ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी को समझाना होगा तो हम क्या बताएंगे? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सबको दुनिया को पता है, अब शंकराचार्य के जमाने में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर था नहीं, कैसे बताएं? ग्रॉस बॉडी क्या है? हार्डवेयर है। उसके अंदर सटल बॉडी क्या है? सॉफ्टवेयर है। अब समझना क्या है? अब अगर आप लोग बच्चों को अगर आपको कुछ समझाना हो, कोई साधना समझानी हो बच्चों को, तो उनको कौन सी साधना बताएंगे? आप बताएंगे ध्रुव की, प्रहलाद की, ये उनको बताना होगा ना, उनके एज के मुताबिक जो है वो एग्जाम्पल दीजिए। मेरे को अभी पता लगा एक दिन की दो दिन पहले कि हमारे यहां एक है प्री केजी क्लास, उन क्लास के बच्चों को बताना है कि डिस्पैशन वैराग्य किसको कहते हैं। बताओ, वो वैराग्य उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे मुझे। कैसे समझाओगे लोग? हम लोग इतने बड़े होकर समझ में नहीं आता है वैराग्य क्या है। प्री केजी को समझाना वैराग्य क्या है। बाल विहार में। तो बच्चों को आपको वहीं का एग्जाम्पल देना है। अच्छा, आप गृहस्थी को अगर समझाना हो तो आप सुखदेव का एग्जाम्पल देकर नहीं समझा सकते। सन्यासी, उनको क्या पता है सन्यासी क्या होता है? गृहस्थी को गृहस्थी का एग्जाम्पल देना होगा ना। इसीलिए यहां पर भगवान कहते हैं जन, राजा जनक को तुम जानते हो, वो गृहस्थी हैं, वो ज्ञानी हैं, मगर अभी भी कर्म कर रहे हैं। बहुत अच्छा। अब मान लो आपको मॉडर्न वर्ल्ड का कुछ एग्जाम्पल, अगर हम पुराना ला के दे दें एंशियंट एग्जाम्पल, या उल्टा कर दें, एंशियंट थिंग को हम मॉडर्न एग्जाम्पल से देना चाहें, दोनों ही गड़बड़ हो जाता है। तो गृहस्थी को भी जो है कर्म से सिद्धि मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग गृहस्थी हैं, शादी कर लिए तो हमको कभी ज्ञान नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। गृहस्थियों को भी ज्ञान होता है, सिद्धि हो सकती है। अच्छा, अब ये बताइए कि जनक राजा कर क्या रहे थे? ज्ञान के बाद में वो कर्म कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? लोक संग्रहम एव अपि कर्तुम अरसी। अरसी माने योग्यता, लोक संग्रह की योग्यता। लोक संग्रह क्या होता है? लोगों को संग्रह करना, ये तो पॉलिटिशियन करते हैं। वो तो पैसे लोग दे के, बसें भेज के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो हमको क्या ये काम करना है लोक संग्रह? वह गांव के अंदर में मदारी वगैरह आ जाते हैं, खिलाड़ी वो खेल दिखाते हैं, तो जैसे वो डमरू बजाना शुरू करता है और वो दो तार एक तार बांध के बांस में, तो लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। क्या है, जब भीड़ इकट्ठी हो गई तब उसके बाद में वो सर्कस दिखाता है। तो क्या हमको ऐसा करना है? नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है। लोक संग्रह का यहां मतलब भीड़ एकत्रित नहीं करना है। यहां पर लोक संग्रह का मतलब है लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम लोक संग्रह। लोग गलत मार्ग पर चल रहे हैं, उनको सही मार्ग दिखाना जो है लोक संग्रह है। लोग गलत मार्ग पर चल रहे हैं, उनको सही मार्ग दिखाना लोक संग्रह है। क्या गलती कर रहे हैं हम लोग? हम लोग केवल कर्म कर रहे हैं, कर्म योग नहीं कर रहे हैं, ये हमारी गलती है। कर्म से क्या होगा? जन्म मरण का चक्कर आएगा। और ज्ञानी, ज्ञानी ये जानता है कि ये गलती कर रहे हैं, इनको सही रास्ता दिखाओ, इनको कर्म योग करना है। यही उसकी सेवा है, सोसाइटी की उन्नति के लिए वो सेवा है। आप कर्म योग करोगे, आपकी उन्नति होगी, आपकी उन्नति होगी तो सोसाइटी की उन्नति होगी। यही लोक संग्रह है। देखो लोग जो है, नौजवान लोग जो है ना, यंग लोग, वो ग्लैमर में फंस जाते हैं। बच्चे जब हमारे कॉलेज में जब जाते हैं ना, तो कई बार वो ग्लैमर के अंदर में फंस जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। और फिर ऐसा ऐसा भी देखा जाता है कि एक बार ड्रग लेने के बाद में जीवन ऐसा बिगड़ता है, फिर सुधरता ही नहीं है, कभी निकल नहीं पाता है। ऐसा भी देखा गया है कि ड्रग लेने के बाद में फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाते हैं, फिर वो रिहैबिलिटेट करके वापस आते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि ड्रग लेने के बाद में पढ़ाई लिखाई खत्म, लाइफ चौपट। ये सब किस कारण होता है? कि वो जो है केवल वो ग्लैमर के पीछे वो दौड़ रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम नेता हो, तुम्हें मार्ग दिखाना होगा, अपने व्यवहार से तुम अपने को ठीक करो, लोगों को मार्ग दिखाओ। अब यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगर आपको विश्वास न हो कि राजा जनक ज्ञानी नहीं थी या ज्ञानी थी, तो बोलते दोनों तरफ से ये ठीक है। ज्ञानी थे इसलिए उनको पता था कि कहां गृहस्थी गलती कर रहे हैं, उनको मार्ग दिखाना है कि कर्म नहीं कर रहे हो, कर्मयोग करो। अगर ज्ञानी नहीं थे तो वो कर्मयोग कर रहे थे, बाद में उनको ज्ञान मिल गया, देखो बहुत वे ठीक हुआ कि नहीं। अगर हम कहें कि शंकराचार्य जी ज्ञानी नहीं थे तो लोक संग्रह कर रहे हैं ना, कर्मयोग कर रहे हैं, उसके बाद ज्ञान मिल जाएगा। और अगर ऐसा कहें कि नहीं वो ज्ञानी थे, उसके बाद में भी कर्म कर रहे हैं, ज्ञान के बाद में कर्म करना या नहीं करना ज्ञानी के ऊपर है। आप किसी भी ज्ञानी को ये नहीं कह सकते कि आप क्यों नहीं कर रहे हो पूजा। आप गुरु जी को नहीं कह सकते आप क्यों नहीं मंदिर जाते हो? ऐसा नहीं कह सकते आप। मंदिर जाना या पूजा करना या जप करना ये सब तो मन की शुद्धि है। मन की शुद्धि के बाद में जब ज्ञान मिल गया फिर हमको क्यों उसको धोना है मन को? फिर नहीं हमें चाहिए, फिर हमारी मर्जी है। हम कर्म करेंगे या नहीं करेंगे, तो बहुत लोग कर्म नहीं करते हैं। ठाकुर रामकृष्ण बाहर आए नहीं कभी, तपोवन महाराज कभी बाहर नहीं आए। उनके जो शिष्य थे विवेकानंद दुनिया घूमे, तपोवन के शिष्य चिन्मयानंद जी दुनिया घूमे, घूम घूम के प्रचार किया। तो उनकी मर्जी है, करेंगे कि नहीं करेंगे ये उनकी मर्जी है। जनकादेह आदेह में कौन आया? आदि के अंदर नाम बताइए। तो यहां पर शंकराचार्य जी बोलते हैं राजा जनक और अश्वपति, और भागवत के अंदर में राजा अम्बरीश, राजा दिलीप, रघु, रंतिदेव, ये सब नाम आते हैं। ये सब लोग कर्म योग करके ये लोग सिद्ध हुए। तो कर्म योग केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, कर्म योग गृहस्थी के लिए भी है। जो भी साधक मन शुद्ध करके ब्रह्मन को प्राप्त करना चाहता है, उस परम को प्राप्त करना चाहता है, उसको कर्मयोग ऑप्शन है, मस्ट है, जरूर करना है। अच्छा, अब भगवान कहते हैं कि देखो ओ अर्जुन तुम श्रेष्ठ हो, तुम जैसा करोगे वैसा लोग आचरण करेंगे। अब भगवान एक श्लोक बताते हैं जिसको हमारे गुरुदेव जो है तीन बार करके चैंट करते थे, तीन बार चैंट करवाते थे। इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक।
यद्यदाचरति श्रेष्ठः,
यद्यदाचरति श्रेष्ठः,
तत्तद्देवेतरो जनः,
तत्तद्देवेतरो जनः,
सयत् प्रमाणं कुरुते, सयत् प्रमाणं कुरुते, लोकस्तदनुवर्तते,
लोकस्तदनुवर्तते,
यद्यद् आचरति श्रेष्ठः, तत्तद्देवेतरो जनः, सयत् प्रमाणं कुरुते, लोकस्तदनुवर्तते। वन्स् मोर्, यद्यदाचरति श्रेष्ठः, तत्तद्देवेतरो जनः, सयत् प्रमाणं कुरुते, लोकस्तदनुवर्तते।
भगवान कहते हैं जो भी आदर्श व्यक्ति है उसका अनुकरण सब कोई करते हैं, सब कोई उसका अनुकरण करते हैं। कैसे? जैसे देखो आप अगर इंडिया में अगर जाओ ना तो कोको कोला की जो गाड़ी होती है ना उसके पीछे में सुनील गावस्कर पी रहा है कोको कोला है ठंडा, बस सब सोचते हैं सुनील गावस्कर कर रहा है तो हम भी पिएंगे, जैसे लोग करते वैसे करेंगे। अमिताभ बच्चन बोलता है आप ये कौन सा आटा लगा रहे हैं, ये सील किया हुआ है इसलिए आपने ले लिया, कौन सा चक्की का आटा देते ना। अब चूंकि अमिताभ बच्चन कह रहा है तो आपको वो आटा लेना है। यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतर जन, जो जो श्रेष्ठ पुरुष करता है इतर जन दूसरे लोग उसको फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? तो कहते हैं स यत प्रमाणम कुरुते, वो प्रमाण बन जाता है, वो स्टैंडर्ड बन जाता है, ये ऐसा कर रहे हैं हमको भी ऐसा करना है, वो स्टैंडर्ड बन जाता है। और उसके बाद लोक तद अनुवर्तते, उसी तरह से लोग भी करते हैं। अर्जुन सोच रहा है भगवान क्या मैं श्रेष्ठ हूं, मन ही मन सोच रहा है। भगवान कहते हाँ श्रेष्ठ हो तुम, श्रेष्ठ अगर नहीं होते तो इतने लोग तुम्हारे साथ कैसे आते, तुम युद्ध करने आए हो इतने लोग आए हुए हैं मैदान के अंदर, तुम श्रेष्ठ हो बोल के तो सब आए हैं। देखो क्रिकेट के मैदान के अंदर में कोई अच्छा खिलाड़ी जब आता है तो उसमें स्टेडियम में जितने भी लोग होते हैं ना वो खड़े होकर उसका अभिनंदन करते हैं ना? सेलिब्रिटी आ रहा है उससे अपेक्षा है, बहुत कुछ अपेक्षा है, इसलिए उसका अभिनंदन करते हैं। गुरुजी हमारे कहते हैं समाज में हर व्यक्ति श्रेष्ठ है, हर व्यक्ति से, हर व्यक्ति का कोई ना कोई फॉलोअर है। हम बताएंगे आपको कैसे फॉलोअर है, हर व्यक्ति का कोई ना कोई फॉलोअर है। बोले कुंभकर्ण के भी फॉलोअर हैं, रावण के भी फॉलोअर हैं, रावण के भी प्रशंसक, जब वो आया था सीरियल जब आया था रामायण का उसमें रावण का जिसने पाठ किया था लोग प्रशंसा करते थे, बहुत अच्छा पाठ किया उसने, देखो रावण के प्रशंसक हुए कि नहीं वहां। आपके घर के अंदर में अगर दो बच्चे हों, एक बड़ा और एक छोटा, छोटा बराबर जो है बड़े का अनुकरण करता है, और हमको एक माता जी ने आके बताया कि मेरा बड़ा लड़का बाल विहार में नहीं आना चाहता है इसलिए छोटा भी नहीं आना चाहता, बड़ा नहीं जा रहा है इसलिए छोटा भी नहीं जाएगा। वो बेचारी बहुत दुख करती थी, बोला उसको फॉलो करता है, हम क्या करें। अच्छा जो माता पिता करते हैं ना बच्चे वही अनुकरण करते हैं। एक परिवार के अंदर में नॉर्मली सब परिवारों में ऐसा ही होता है, कुछ भी काम होगा फादर जो है खड़े होकर देखते हैं और घर में माताएं ज्यादा बोलती हैं पिता कम बोलते हैं। तो दो बच्चे खेल रहे थे घर घर खेल रहे थे तो एक बच्चा जो है पिता बना तो वो नकल कर रहा खड़ा है बस देख रहा है, दूसरा बच्चा माता बना वो बकर 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 कर रहा है खेल रहा है। तो अनुकरण, एक बच्चे ने देखा कि मेरे पिता जो है सिगरेट पीते हैं, उसने एक पेंसिल ले ली बोलते मैं सिगरेट पी रहा हूं, अनुकरण ये चलता रहता है ऐसे बराबर। अच्छा लोग देखो अच्छा काम को तो फॉलो करते ही हैं मगर ज्यादा जो है ना गलत काम को फॉलो करते हैं। अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति गलत काम करे ना तो लोग उसको फॉलो करते हैं। जैसे भारतवर्ष के अंदर में कोई भी काम करवाना हो सरकारी काम तो बोलते हैं महात्मा गांधी लाए हो, डू अंडरस्टैंड व्हाट इज महात्मा गांधी, हर नोट के ऊपर महात्मा गांधी की छाप होती है, वो पूछते हैं महात्मा गांधी लाए हो, पैसे लाए हो, बोले क्यों लेते हो, बोला मेरा बॉस भी लेता है ऊपर भी लेता है ऊपर भी लेता है उसके ऊपर भी लेता है, कई जगह तो नीचे कलेक्शन होता बोलते हैं ऊपर तक जाता है, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो गलत काम जो है ना बहुत जल्दी लोग अनुकरण करते हैं। आगे के लोग जो फ्रीडम फाइटर थे ना वो अच्छा काम करते थे और जो कहते तो खुद करते थे। अब जैसे दंडी यात्रा गांधी जी को उन्होंने कहा मैं करूंगा, तो ऐसा नहीं कहा कि लोगों को तुम लोग करो मैं कहता हूं, वो खुद आगे गए उसके पीछे लोग गए। तो जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसे वैसे करते हैं। एक माता जी एक महात्मा के पास आई कि मेरा बच्चा चॉकलेट बहुत खाता है आप उसको मना करो, नहीं खाए। महात्मा जी ने कहा कि आप एक महीने बाद आना, एक महीने के बाद में फिर जो है माता जी फिर बच्चे को लेके आई तो उसने उन्हें कहा कि चॉकलेट मत खाना, बच्चा मान गया। तो माता जी ने पूछा कि आप ये बात तो एक महीना पहले भी कह सकते थे, आपको क्या तकलीफ थी? महात्मा जी कह ले, मैं खुद चॉकलेट खाता था, मैंने एक महीने से चॉकलेट नहीं खाया, इसलिए मेरी वाणी का प्रभाव हुआ, अब ये लड़का चॉकलेट नहीं खाएगा। अगर उस टाइम मैं कहता तो मेरे वाणी का प्रभाव
नहीं होता,
अब नहीं होता। तो जो कहो उसको जो है प्रैक्टिस करना चाहिए। अब भगवान कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं एक और उदाहरण तुमको देता हूं। क्या है वो उदाहरण? बोले मेरे को देखो, नेक्स्ट वर्स।
न मे पार्थास्ति कर्तव्यम्, त्रिषु लोकेषु किंचन, नानवाप्तमवाप्तव्यम्, वर्त एव च कर्मणि, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन, नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि।
हमने अमेरिका की एक और चीज देखी, यहां बच्चों को कहो मुंडन कर लो, नहीं करेंगे। उनको चाणक्य सीरियल दिखा दो एक बार, राइट अवे करेंगे, चोटी भी रखेंगे, नॉट ओनली मुंडन, चोटी भी रखेंगे, कान में कुंडल भी पहनेंगे, हमको ऐसा बनना है, चाणक्य बनना है हमको। भगवान कहते हैं मेरे को देखो, न मैं पार्थास्ति कर्तव्य, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है पार्थ, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। क्यों कर्तव्य नहीं है? मेरे को इससे कुछ नहीं लेना है, इस संसार से क्यों नहीं लेना? अरे मैं तो मालिक हूं, कौन सी चीज मेरी नहीं है, यहां क्या लेना है मेरे को? भगवान तो मालिक है ना सारी दुनिया के, उनको क्या लेना है, उसे कुछ नहीं लेना है। त्रिशु लोक ही सुकिंचन है, बोले तीनों लोक में मेरा है सब कुछ, कुछ नहीं लेना है। न अनावाप्तम अवाप्तम, ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे पास नहीं है, सारी दुनिया तो मेरी है, फिर भी मैं कर्म करता हूं, मेरे को तो नहीं कुछ लेना है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। अब और तुमको क्या एग्जाम्पल दूं? मैं तो भगवान हूं, ईश्वर हूं, फिर भी जो है कर्म करता हूं, कुछ नहीं लेना है मेरे को इस दुनिया से। अब इसके बाद भगवान बोलेंगे कि अगर मैं कर्म ना करूं तो क्या होगा, मेरे को कुछ नहीं लेना फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं, अगर मैं ना करूं तो क्या होगा, ये बताएंगे भगवान, उसको हम अगले सत्र में देखेंगे।
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो